हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। आज बहुत विशेष दिन है, भगवान वामन का प्राकट्य दिवस है और साथ ही साथ श्री अजय गोस्वामी जी का विभाव दिवस है। वामन द्वादशी महामहोत्सव की, अजय गोस्वामी अमरभक्ति महामहोत्सव की। इस अति पावन उत्सव में आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त इस ग्रेस राधा कांत प्रभु। राधा कांत प्रभु केवल एक बार इस मंदिर में आए थे, लगभग 3 साल पहले प्रभु। और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण में। ये जो वृंदावन का गुरुकुल है उनके 22 प्रिंसिपल हैं और सन 2010 से ये सेवा कर रहे हैं वृंदावन गुरुकुल में एज ए 22 प्रिंसिपल। और ऐसे भौतिक दृष्टि से IIT कानपुर से उन्होंने BTech और MTech किया हुआ है और बहुत प्रसिद्ध हैं अपने सरलता और मधुरता के लिए और वैसे इनके प्रवचन होते हैं। और अभी पिछले 4 सालों से वृंदावन गुरुकुल का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और 100 acres लैंड 100 acres की जमीन मिली है। उसमें बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आ रहा है वृंदावन गुरुकुल का, साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चल रही है। तो बहुत ही रमणीक स्थान है और जहाँ अगस्त्य का वध हुआ था, दैट इज द प्लेस जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य का वध किया था, उसी जगह पे उसी गांव में वृंदावन का गुरुकुल नया बन रहा है। और प्रभु जी पूरा मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, उनके साथ उनके जो गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं इसके श्रीला पुरुषोत्तम प्रभु उनको इस सहयोग देते हैं। तो परम सौभाग्य आज ये दिल्ली में आए, यहाँ पे इनसे निवेदन किया आज के विशेष दिन के लिए, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। तो कृपया करके बहुत ध्यान पूर्वक इनके मुखारविंद से इनका प्रवचन सुनिए और इनके संग का पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके सत्संग के बीच में आता हूं। आज हम बहुत पवित्र दिन है जैसा प्रभु जी ने बताया, तो आज हम दो लीला के बारे में श्रवण करेंगे, वामन जी के बारे में और जीव गोस्वामी के बारे में। तो दोनों ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, काफी बोला जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच में आज कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं केवल एक श्लोक पढ़ के उसके बाद फिर शुरू करता हूँ। तो कौन से स्कंध में आता है वामन जी का वर्णन? 8वें स्कंध में। श्रीमद् भागवतम में अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और 8वें स्कंध में विशेष करके, जैसे इसलिए आप देखेंगे 8वें स्कंध के जो ऊपर चित्र है वो वामन जी का है, विशेष करके इसमें वामन जी की लीला बहुत सुंदर रूप से वर्णन की गई है। तो एक छोटा श्लोक पढ़ेंगे, ये 8वें स्कंध का 18वां अध्याय का 12वां श्लोक। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायाथ अव्यक्त चित्यक्तम अधारयत् हरिहि बभूवते नैव सवामनो वटुः सम्पश्यतो दिव्य गति यथा नतः। तो ये जो वामन जी की लीला है ये 4-5 अध्याय में है श्रीमद् भागवत में। तो इसके पहले अनुवाद पढ़ के फिर चर्चा करूंगा। अनुवाद इस प्रकार है, भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए, यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया जिस तरह कोई नट कर लेता है। कृपा दिखाइए, भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए, यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा यहां पर नटह शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होता है, होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार अकरोत् भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसा कि भगवत गीता 4:9 में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्तत। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो इसके पहले की लीलाएं मैं तो आपको बताता हूं। तो बलि महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज के पौत्र, उनके पोते। तो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, और बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए क्योंकि वो शुक्राचार्य की और ब्राह्मणों की बहुत उन्होंने सेवा किया, और इतने शक्तिशाली हो गए कि वो इंद्र की राजधानी में आए और उनको देखने मात्र से ही सारे देवता डर के और सब वहां से भागे। इतने तेजस्वी थे बलि महाराज। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जब ब्राह्मणों की या वैष्णवों की हम सेवा करते हैं तो इससे आध्यात्मिक रूप में तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होती है। तो वैसा ही हुआ, बलि महाराज के तेज को देख के सारे देवता वहां से भाग गए स्वर्ग छोड़ के, और सारे देवता अत्यंत दुखी थे। सोचे उनका पूरा राज्य चला गया, देवता लोग इतने ऐश्वर्य आडंबर पर रहते हैं, लेकिन अचानक से उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो देवता लोग बहुत दुखी थे और फिर वो अपने माता के पास गए। देवताओं की माँ का क्या नाम है? अदिति। तो अदिति माँ के पास गए और अपना दुख प्रकट किए। तो माता तो स्वाभाविक रूप से बच्चों का दुख देख के बहुत दुखी हो जाती है, तो माता अदिति भी बहुत दुखी हो गई। तो विचार करने के कैसे क्या करें। और कश्यप मुनि जो उनके पति थे वो समाधि में थे। तो अनेक वर्षों के बाद कश्यप मुनि बाहर बाहर की चेतना में आए और सब पूछने लगे माता अदिति से, सब कुछ कुशल है, क्या समाचार है। तो माता अदिति ने अपना दुख प्रकट किया और कहा कि पतिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि सारे आपके जो पुत्र हैं, सारे मेरे पुत्र हैं देवता, वो अपने राज्य से भी वंचित हो गए। और उनको बहुत कृपया याचना की कि आप कृपया कोई मार्ग बताइए, कोई उपाय बताइए ताकि उनको दोबारा राज्य प्राप्त हो जाए। तो कश्यप मुनि ने पहले तो कुछ उपदेश दिए, आध्यात्मिक उपदेश कि नहीं, सुख दुख संसार में चलता रहता है, ये शरीर क्या नश्वर है, टेम्पररी है। तो लेकिन फिर अदिति माँ को समझ में नहीं आया। तो कश्यप मुनि समझ गए कि ये जो ये सब तो दर्शन है भगवद गीता का, और ये माता अदिति अभी उस स्थिति में नहीं है कि इसको स्वीकार कर ले। तो इसीलिए फिर कश्यप मुनि ने उनको एक विशेष विधि बताया, पयोव्रत। तो इसमें भी बहुत अच्छे हमें शिक्षा मिलती है कि जीव जो है हर एक अलग अलग स्तर में होता है, तो हर कोई तुरंत शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम पर। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनको देखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति तुरंत शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा उन्हें मार्ग पता है कि वो ये इनके प्रकार है ना मन कृष्ण विषय, किसी प्रकार से वो भगवान में अपना मन लगाए, भगवान का नाम ले। तो कश्यप मुनि ने ठीक वैसा ही किया, उन्होंने एक विशेष व्रत का नाम बताया, उसका नाम है पयोव्रत। 12 दिन का एक व्रत है, पयो यानी दूध। तो विशेष करके इस व्रत में केवल दूध पीना होता था और कई सारे नियम है, लेकिन मेन जो नियम इसमें ये था कि भगवान के अर्चित विग्रह की पूजा करना और भगवान का नाम लेना। विशेष करके भागवत में कहा गया द्वादश अक्षर मंत्र, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का उद्देश्य दिया कश्यप मुनि ने माता अदिति को और कई सारे नियम बताए, क्या क्या पालन करना है, भगवान को भोग लगाना है, ब्राह्मण को भोजन देना है, और शिव विग्रह की पूजा करना, भगवान के नाम उच्चारण करना। तो बहुत विस्तार रूप से वर्णन है पयोव्रत का। कश्यप मुनि ने कहा कि ये व्रत करने से निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे और सारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो अदिति माता ने बहुत ध्यान पूर्वक इन उनके उपदेश का पालन किया और 12 दिन तक उन्होंने इस पयोव्रत का पालन किया और भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि वो साक्षात प्रकट हो गए माता अदिति के सामने। और भगवान तो अंतर्यामी, वो समझ ही गए कि माता अदिति को उनकी क्या इच्छा थी। तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में सर। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हमारे इस्कॉन में हम डेली पयोव्रत कर रहे हैं। कि पयोव्रत मतलब क्या? भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करना, भगवान का नाम लेना और सारे नियमों का पालन करना। तो हम सब कर ही रहे हैं, मंदिर में जब आते हैं भगवान के अर्चन विग्रह की सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं डेली जो अंदर पुजारी हैं, और हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें जो जीवन शैली दी वो हर दिन हम पयोव्रत का ही पालन करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान दर्शन देंगे। तो जब भगवान दर्शन दिए अदिति माँ को, अदिति माँ बहुत प्रसन्न हुई, उसके बाद भगवान फिर अप्रकट हो गए। और फिर कुछ ही समय के बाद सेम जैसे कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो भौतिक रूप से प्रकट नहीं होते, जैसे साधारण पुरुष का स्त्री का जन्म होता है संसार में। तो जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए, पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में गए, और फिर उनके गर्भ से भगवान चतुर्पुरुष रूप में प्रकट हुए और फिर बालक बने। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कश्यप मुनि के हृदय से भगवान पहले उनके हृदय में प्रकट हुए, फिर अदिति के घर में चले गए और फिर वहां से वो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए प्रकट हुए। इसके पहले श्लोक में वर्णन है कि इसी तिथि में, जो कि इसे कहा जाता है श्रवण द्वादशी यानी भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष का द्वादशी, तो इसी शुभ अवसर में अभिजीत नाम का जब नक्षत्र था तो उस समय भगवान प्रकट हुए और इस द्वादशी को विजया द्वादशी भी कहते हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है और इस शुभ घड़ी में सारे अप्सराएं, सारे गंधर्व सब गीत गाने लगे, नृत्य करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुष्प इत्यादि, और सब पुष्प वृष्टि करने लगे अदिति के माता अदिति के घर के ऊपर, क्योंकि भगवान आज यहां पे प्रकट हुए। और भगवान जब प्रकट हुए उनके गर्भ से तो माता अदिति ने देखा और कश्यप मुनि ने जय जय का हुंकार किया भगवान को दर्शन करके। और फिर भगवान जो दिव्य सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, पीत वर्ण के पोशाक धारण किए हुए, शिवस चिन्ह था, कौस्तुभ मणि उनके हृदय गले में था, तो वो चतुर्भुज भगवान फिर किसका रूप धारण कर लेते हैं? एक वामन, वामन यानी नाटे, बौना कहते हैं ना हिंदी में, तो वामन उसी शब्द से, मतलब नाटे ब्रह्मचारी का रूप उन्होंने धारण किया वटु। तो प्रभुपाद जी जो भागवतम का श्लोक है इसमें कहते हैं नट शब्द आया, नट नाटक जो नट मतलब क्या, जो एक ही एक्टर होता है वो अलग अलग समय अलग अलग रूप धारण करता है, उसी प्रकार भगवान वही विष्णु है जो कि अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे भगवान किसका रूप धारण किए? एक वामन, एक नट का रूप धारण किए। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि सब भगवान के नित्य रूप है, ऐसा नहीं कि भगवान कोई भौतिक रूप धारण करते हैं। कुछ मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि अवतार यानी भगवान, भगवान तो निराकार है लेकिन वो कोई रूप धारण करते हैं भौतिक रूप, ऐसा नहीं, भगवान के सारे रूप नित्य हैं। अवतार यानी आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना, और जैसे भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म शमे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादेह पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। वास्तव में ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बहुत बार इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में अपने प्रवचनों में कहते हैं, बहुत ही विशेष श्लोक है भागवत भगवत गीता का, कि भगवान कहते हैं केवल एक चीज से अगर हम समझ गए कि भगवान का जो जन्म है और उनकी जो लीला है वो क्या है, दिव्य है, उनको अगर हम तात्विक रूप से समझ रहे हैं जन्म कर्म चरे दिव्यम एवं यो वेति तत्वत, केवल हम इतना ही अगर समझ जाए तो भगवान क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। सोचिए कितनी विशेष ये बात है, और प्रभुपाद जी कृपा से उनके ग्रंथ में बार बार प्रभुपाद जी इस पे जोर देते हैं, हमें समझाते हैं कि इससे भगवान का रूप दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह। इस संसार में जब भगवान आते हैं उनका शरीर भौतिक नहीं होता, उनकी सारी लीलाएं वो दिव्य है, तो केवल हम इतना समझ जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन एक शब्द महत्वपूर्ण है तत्वतः, मैं तात्विक रूप से समझना चाहिए, इसलिए हमें प्रभुपाद जी ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, श्रीमद भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण रूप से हम तत्वतः समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। और जब भगवान यहाँ पे आते हैं, जब लीला प्रकट करते हैं तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए और जैसे भगवान प्रकट हुए तो बच्चा जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म कई क्रियाएं होते हैं, जात कर्म और फिर बाद में जो संस्कार होते हैं जब जनेऊ धारण करते हैं बच्चे। लेकिन वामन देव का तुरंत ही जात कर्म भी हो गया और उनका यज्ञोपवीत भी हो गया। तो बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में कि जो यज्ञोपवीत होता है, जो जनेऊ, वो किसने दिया? वामन देव को बृहस्पति स्वयं प्रदान करते हैं उनको, उनका यज्ञोपवीत। और वामन देव स्वयं सॉरी जो सूर्यदेव है वो उनको गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं उनके कानों में, और कश्यप मुनि उनको बैठने का आसन प्रदान करते हैं, और पृथ्वी माता उनको हिरण की जो क्या कहते हैं हिरण छाल देते हैं पहनने के लिए, और स्वयं चंद्रमा उनको ब्रह्मदंड, ब्रह्मचारी भी एक दंड, ऐसे सन्यासी दंडा धारण करते हैं वैसे ब्रह्मचारी भी छोटे से दंडा धारण करते हैं। तो जो सोमदेव है चंद्रमा, वो स्वयं उनको चंद्रदेव उनको वो ब्रह्मदंड देते हैं, और अतिथि माँ उनको उनकी कॉपी प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण राधिका राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुधमान की जय। और इंद्रदेव स्वयं उनको छत्री प्रदान करते हैं। आपने देखा ना चित्र जैसे वामन देव खड़े हैं उनके सर पे बहुत सुंदर छत्र है, तो छत्र कौन प्रदान करते हैं? इंद्रदेव स्वयं। और ब्रह्मा जी उनको कमंडलू प्रदान करते हैं, और जो सप्तऋषि हैं वो उनको कुशग्रास देते हैं, और सरस्वती माँ उनको रुद्राक्ष जो माला जैसे रुद्राक्ष देते हैं। तो इस प्रकार और कुबेर जो है वो क्या प्रदान करते हैं? उनको भिक्षा मांगने के लिए जो उनका पात्र है वो प्रदान करते हैं। और भगवती जो शिव जी की पत्नी माता दुर्गा वो उनको क्या प्रदान करती है? उनकी पहला भिक्षा से पहली बार भिक्षा उनको स्वयं भगवती माँ देती है। और इस प्रकार सारे देवी देवता पूरे ब्रह्मांड में स्वागत करते हैं किसका? वामन देव का। वामन देव का बहुत सब स्वागत करते हैं। और उसके बाद और सोचिए वामन देव स्वयं भगवान है, उनकी जो शरीर से तेज निकली वो क्या है? ब्रह्मज्योति। ब्रह्मज्योति क्या है? भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मण हुई प्रतिष्ठा। तो ब्रह्मज्योति भगवान के दिव्य शरीर का तेज है, तो वही तेज उनके शरीर से निकल रहा था और सारे दिशाओं में उनका तेज फैल गया। और फिर तुरंत वामन देव ने अग्नि का आह्वान किया और उन्होंने यज्ञ किया। और फिर वामन देव जो उनका असली उद्देश्य क्या असली उद्देश्य था वामन देव के प्रकट होने का? माता दीदी ने क्यों प्रार्थना की थी? ताकि देवताओं को उनका राज्य वापस दे। तो तुरंत वामन देव का जो असली उद्देश्य था उनके प्रकट होने का उसके बारे में विचार किया। तो उस समय बलि महाराज जो है वो नर्मदा के तट पे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। और बलि महाराज को विशेष कृपा प्रदान करने के लिए देखिए यहाँ पे जो श्लोक है, टू शो हिज मर्सी टू बलि महाराज। एक दूसरी से हम सब जानते हैं, आप सब सुने लीला, वामन देव जाके क्या करेंगे? सब कुछ कर लेंगे बलि महाराज का। लेकिन यहाँ पे श्लोक में कहा गया है कि विशेष कृपा करने के लिए, भगवान जब भी करते हैं विशेष कृपा ही करते हैं। तो बलि महाराज पे विशेष कृपा करने के लिए, सोचिए अगर लीला नहीं होती तो बलि महाराज का नाम क्या द्वादश महाजन में आता? नहीं आता। आज हम बलि महाराज का नाम द्वादश महाजन के लिस्ट में लेते हैं। और जो भक्ति की जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। तो आत्मनिवेदन के जो आचार्य है जो हमें शिक्षा देते हैं वो कौन है? बलि महाराज। तो आज भगवान के पास गए इसलिए ये लीला की, इसलिए बलि महाराज इतने प्रसिद्ध है, इतने महान वैष्णव आचार्य है। तो विशेष कृपा करने के लिए वामन देव कहां चले गए? बलि महाराज के सभा जहां वो यज्ञ कर रहे थे। और कहते थे वामन देव कि हर जब वो चल के जा रहे थे तो पृथ्वी को अपने हर एक स्टेप से वो पृथ्वी माँ को दबा रहे थे। क्योंकि सोचिए भगवान वामन देव कौन है? स्वयं भगवान है, सारी सृष्टि उनके अंदर समाई है, तो कितने भारी होंगे, कितना भारी होगा उनका शरीर। तो यहां पे तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका ये अर्थ है कि बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वामन देव को किसी चीज की आवश्यकता थी, वो तो स्वयं भगवान है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, लेकिन फिर भी वो कृपा करने किसके पास गए? बलि महाराज के पास गए। तो खैर लीला बहुत लंबी है, हम तो संक्षिप्त में सुनेंगे। तो वहां पे वामन देव जब पहुंचे उनकी जब सभा में जहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो वामन देव के तेज को देख के सब कोई आकर्षित हो गए। स्वयं बलि महाराज और जितने वहां पे ब्राह्मण थे सब बहुत आकर्षित हो गए। सोचे कौन प्रकट हो गए? स्वयं सूर्यदेव मानो वहां प्रकट हो गए, या सनत कुमार प्रकट हो गए। लेकिन सब कोई समझे कि कोई महान महान दिव्य पुरुष का प्रकट हुआ है। और फिर वामन देव वहां पे जब प्रवेश किए तो बलि महाराज तुरंत बहुत प्रसन्न हो गए उनको देख के, और उनको स्वागत किए और उनको बैठने के लिए आसन दिया। और फिर बलि महाराज ने स्वयं पूजा की, किसकी? वामन देव की। उनके चरण धोए और फिर बलि महाराज ने उनसे उनसे पूछा कि हे वामन देव, आप यहाँ पे आए हैं, अवश्य कुछ कार्य है, आप कुछ शायद मांगना चाहते हैं, तो आप कृपया मुझे मांगिए। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे कुछ भी मांग सकते हैं, आप मुझे गाय मांग सकते हैं, सोना मांग सकते हैं, संपत्ति मांग सकते हैं, आपको मैं कई गाय कई गांव दे सकता हूं, हाथी घोड़े, क्या चाहिए आप बताइए, मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार जब भगवान ने सुना ऐसा, तो वामन देव कहते हैं, वामन देव बलि भरत से कहते हैं कि हाँ आप वास्तव में महान हैं, आप महान वंश से आए हैं और आप आपने जैसे कहा वो आपके लिए अनुकूल है। और फिर भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं उनके वंश के, प्रहलाद महाराज कौन है, उनके दादाजी हैं, प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करते हैं, हिरण्यकश्यप की प्रशंसा करते हैं, कौन, वामन देव, क्योंकि वो भी महान थे, कहते हैं हिरण्यकश्यप इतने शूरवीर थे, इतने शक्तिशाली थे कि सब कोई उनसे भयभीत थे। इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं बलि महाराज की। और अंत में बलि महाराज से क्या मांगते हैं, मुझे केवल 3 पांव भूमि दे दीजिए। और फिर जब ये बलि महाराज सुनते हैं तो बोलते हैं क्या केवल 3 पांव भूमि मांग रहे हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मैं तुम्हें पूरा पूरा एक द्वीप दे दूंगा, देने में सक्षम हूं, और केवल 3 पांव जमीन मांग रहे हो, लगता है आप छोटे बच्चे हो, आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं है, प्राउड नहीं है आपकी बुद्धि। तो फिर कहते हैं और कुछ मांगो, तो फिर भगवान कहते हैं, ये आप सब सुने होंगे बहुत प्रसिद्ध शब्द, भगवान कहते हैं कि यावन तो विषय आपृष्ठ त्रिलोक्यम अजित अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूर यतुनृप। तो कहते हैं जो व्यक्ति के इंद्रिय उनके वश में नहीं है, उनको सारे विश्व के संपत्ति मिलने पर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। और अगर मैं 3 पांव भूमि से संतुष्ट नहीं होगा तो मुझे सारे संसार के संपत्ति मिलने में संतुष्ट नहीं होगा। वास्तव में उनका कहने का यह था कि संतुष्टि कहां से आती है, अंदर से। जब हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करके रहते हैं तभी हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, अदरवाइज कोई जो मनुष्य का जो लोग है उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। एक व्यक्ति के भी लोग को पूर्ण करने के लिए पूरा संसार भी पर्याप्त नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि कई सारे महान राजा थे, सारे संपत्ति उनका था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तो इस प्रकार फिर वामन देव कहते हैं कि नहीं, मुझे 3 पांव भूमि चाहिए। और बलि महाराज प्रस्तुत हो गए क्या करने के लिए, उनको 3 पांव भूमि देने के लिए, संकल्प करने ही वाले थे। इतने में क्या हो गया, कौन रोकने आ गए, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं शुक्र आचार्य मतलब ये जो वंशज के रूप में जो होते हैं ना, कुल गुरु टाइप के जो आते हैं, उनके पुत्र उनके पुत्र, उसी प्रकार शुक्राचार्य। तो असली गुरु नहीं थे शुक्राचार्य, आते उनको क्या बोलते हैं, रुको रुको ऐसा मत करो, ये विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आ गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैसे गुरु है जो कि अपने शिष्य से क्या चाहते हैं, भौतिक संपत्ति। तो बलि महाराज को, शुक्राचार्य को डर लगा, अरे अगर बलि महाराज की सारी संपत्ति चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो इन पे निर्भर हूं, मुझे कौन दक्षिणा देगा, मेरा घर कैसे चलेगा। अधिकतर गुरु आज के जमाने ऐसे ही होते हैं, वो केवल अपने शिष्यों को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं ताकि उनका भी धंधा चलता रहे और उनको दक्षिणा मिलती रहे। तो शुक्राचार्य वैसे ही गुरु है, तो उन्होंने उनको रोका, बोला कि नहीं ऐसा मत करो। और फिर कई लॉजिक देते हैं, कई बात नहीं, कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, कई परिस्थिति है, अपने प्राण के संकट जब आ जाए तो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कोई बात नहीं, इसको मना कर दो। लेकिन बलि महाराज ने जब ऐसा सुना तो बलि महाराज ने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बलि महाराज कहते हैं कि पृथ्वी माँ हर प्रकार के बोझ को अपने पर धारण करती है, लेकिन एक झूठा आदमी का बोझ पृथ्वी धारण नहीं कर सकती। मैं झूठा नहीं बनना चाहता, मृत्यु तो एक दिन आना ही है, एक दिन सारी संपत्ति चली जाएगी, तो मैं इतना बड़ा अपयश को नहीं स्वीकार करना चाहता। मैंने जो वचन दे दिया मैं उसको पूरा करूंगा, और अगर विष्णु है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उन्हें मन में ऐसा सोचा, भगवान विष्णु का वैसे भी सब कुछ विष्णु का ही है, अगर भगवान विष्णु है तो और अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि हाँ मैं 3 पद भूमि आपको प्रदान करता हूं। और फिर शुक्राचार्य गुस्सा होकर उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारी सारी संपत्ति चली जाएगी। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने जैसा भी उन्होंने प्रतिज्ञा किया और वामन देव को बोला कि हाँ आप 3 पांव स्वीकार कीजिए, तो भगवान वामन देव ने क्या किया, तो शरीर को बहुत विशाल रूप धारण कर लिए, विराट रूप धारण कर लिए, पूरे उनका पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर से भर लिया। अपने पहले चरण से उन्होंने क्या किया, सारे नीचे के जितने लोग हैं, भूलोक और उसके नीचे वाले लोग, सबको उन्होंने अपने एक पांव से उन्होंने नाप लिया। और फिर दूसरे चरण से भगवान वामन ने क्या किया, जितने ऊपर के लोग हैं वो सबको भगवान ने अपने दूसरे चरण कमल से ढक दिया। और जब अपने दूसरे चरण कमल में ऊपर के लोक में भगवान जब विस्तार किए तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी और सारे देवता उनकी पूजा करने लगे, स्तुति करने लगे, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से लेकर उनके चरण को धोया, और यही जल क्या बन जाता आगे, गंगा जी। तो गंगा जी वही जल है जो भगवान के चरण कमलों से निकला जब ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोए अपने कमंडलों के जल से। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि साथ ही साथ क्या हुआ, जब भगवान ने अपने चरण को बड़ा किया तो आप जानते हैं इस ब्रह्मांड किस पे स्थित है, कारण सागर पे। तो वो क्या हुआ, भगवान के चरण से ब्रह्मांड का क्रैक आ गया, थोड़ा सा गैप होके जो कारण सागर है उसका जल भी अंदर आने लगा। तो जो गंगा जी है वो ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल भी है और जो कारण सागर जो उसका जल भी है। तो जब तो इस प्रकार भगवान वामन ने सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से उन्होंने नाप लिया। और यहां वर्णन है कि कैसे जो भगवान का दिव्य रूप है उनका जो नाभि है उसमें पूरा आकाश समाया हुआ था, उनके जो कमर है उसमें सातों सागर थे, उनके उनके वक्ष स्थल में सारे ताराएं मौजूद थी। हा? तो इस प्रकार से सब भगवान के विराट रूप का वर्णन है। और भगवान कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, पीत वस्त्र धारण किए थे। और फिर जब भगवान ने अपने दोनों चरणों से सब कुछ नाप दिया तो सृष्टि में कुछ बचा ही नहीं, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, ये तीसरा पांव कहां डालेंगे, भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। और तो उसके बाद भगवान थोड़े से क्रोधित हो गए बाह्य रूप से, और फिर कि तीसरे पांव कहां पे रखेंगे। एक तरह से देखा जाए तो वामन बलि महाराज अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता, उन्होंने कहा था मैं तीन पांव भूमि दूंगा, लेकिन वो दो में ही भगवान ने सारी सृष्टि को नाप लिया। तो उसके बाद भगवान के इच्छा अनुसार गरुड़ जी ने बद्दी बना लिया, किसको, बलि महाराज को। देखिए भगवान की किस तरह से कृपा करते हैं, बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया लेकिन अंत में उनको क्या मिला, भगवान ने उनको ऊपर से बंदी बना लिया, नहीं आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, तो वरुण के पास से उनको बांध दिया। और सोचिए बलि महाराज पूर्ण रूप से खड़े हैं, बिल्कुल सब कुछ देने के बाद भी उनकी क्या दशाएं देखी। लेकिन फिर बलि महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो यहां पर हम असली पता चलता है कि बलि महाराज क्यों इतने बड़े महाजन है। तो बलि महाराज जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं कि तो भगवान ये तो मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है कि आप सब कुछ मेरे से छीन लिए। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना भागवत में श्लोक, यस्य अहम् अनुगृह्णामि हरिष्य तत् धनं क्षणे। तो भक्तों का यही भाव होता है जब भगवान कुछ हमसे हर लेते हैं या बाहरी दृष्टि से कुछ बुरा होता है हमारे साथ में क्या सोचना चाहिए, तत्तेन कंपा सुसमीक्ष मात्र भुंजानु एवात्मा कृतम विपाक कृत्वा कपूर्भिः विदधन् नमस्ते जीवे तो यह मुक्ति पदे से नायका। कि जब भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आता है तो कई बार हम सोचते हैं भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, जो हम देखते हैं जो असली भक्त है उनका क्या भाव है कि मेरे जो बुरे कर्म है मुझे तो और भी बहुत दंड मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान बहुत दयालु है, मुझे बहुत थोड़ा दंड दे रहे हैं। या हमें ऐसा सोचना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है ताकि भगवान मुझसे सब कुछ छीन रहे हैं, क्यों, ताकि मैं भगवान की शरण ग्रहण कर पाऊं। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे थे बिजनेस करने का लेकिन भगवान ने सब कुछ उनसे छीन लिया। तो प्रभुपाद जी यही श्लोक बोलते हैं बार बार कि भगवान ने मुझे विशेष कृपा करके सब कुछ मुझसे छीन लिया। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहां गए, वृंदावन गए और फिर इस्कॉन की स्थापना की। तो भगवान की विशेष कृपा है जब वो भक्तों से सब कुछ छीन लेते हैं। तो बलि महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना की और इतने सुंदर जब बलि महाराज ने प्रार्थना की तो कौन प्रसन्न हो गए, उनके दादाजी बहुत प्रसन्न हो गए, प्रहलाद महाराज वो भी प्रकट हो गए वहां पे, वो भी भगवान की स्तुति किए कि भगवान आप कितने दयालु हैं, आप तो मेरे कुल के लिए इतने कृपालु हैं कि आप स्वयं कृपा करने आए, किस पे, मेरे पौत्र बलि महाराज की, तो प्रहलाद महाराज ने सुंदर प्रार्थना की और फिर बलि महाराज ने कहा कि आप तीसरे पांव मेरे सर पे रखिए। तो भगवान ने तीसरे पांव बलि महाराज के सर पे धारण किए और फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बलि महाराज को बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बलि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पे और तुम जाओ सुतल लोक पे जाओ जो कि बहुत सुंदर लोक है, हालांकि नीचे है लेकिन उसे बिल्वस्वरूप कहते हैं, बहुत सुंदर लोक है वो जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं निर्माण किया है। तो भगवान कहते हैं जाओ सुतल लोक में जाओ और भगवान कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा, रक्षक बनूंगा। सोचिए कितने सौभाग्य की बात है कि बलि महाराज के गार्ड कौन बनते हैं, स्वयं भगवान। सोचिए सिक्योरिटी गार्ड होना कोई एक इतनी ही क्या कहते हैं मतलब सामान्य पोजीशन नहीं है कि नहीं, कहते गार्ड इधर आओ इधर जाओ, तो भगवान सोचिए आज सिक्योरिटी गार्ड बन गए किसके, बलि महाराज की। ये देखिए भगवान का प्रेम उनके भक्तों के लिए। और प्रहलाद महाराज भी वहां जाते हैं सुतल लोक में, भगवान स्वयं भगवान कहते हैं तुम हमेशा मेरा दर्शन प्राप्त कर पाओगे, कौन बलि महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों। और फिर कहते हैं कि अगले जो मनु आएगा उसमें तुम इंद्र बन जाओगे बलि महाराज को। तो देखिए भगवान ने कितना ऐश्वर्य प्रदान किया, पहले एक दूसरे से ऐश्वर्य छीन लिया लेकिन फिर ऐश्वर्य प्रदान किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि दो तरह के ऐश्वर्य होते हैं, एक होते हैं जो हमारे कर्मों से प्राप्त होते हैं और एक होता है जो भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो भगवान के आशीर्वाद से जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं वो असली ऐश्वर्य और कभी उनका विनाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों में विशेष रूप से जब ऐश्वर्य देते हैं तो कैसे ऐश्वर्य देते हैं, ये दिव्य ऐश्वर्य जो भगवान प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार की तो जो इतना ऐश्वर्य जो प्रभुपाद जी को मिला, इतने सेंटर बने, ये सब भगवान का दिव्य आशीर्वाद से मिला। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीला ये है बलि महाराज की। और अंत में क्या होता है, फिर जब भगवान जब बलि महाराज और प्रहलाद जी चले जाते हैं तो फिर भगवान कहते हैं इस कैसे जो यज्ञ था इसको पूरा की जाए। तो उसमें शुक्राचार्य बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आपके नाम के उच्चारण से सारे त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक उच्चारण करते हैं 8:23:16 शुक्राचार्य कहते हैं कि मंत्रतस्तंत्रतश्चिद्रम देश कालार्थ वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो कहते हैं जो भी त्रुटियां होती है यज्ञ करने में या कोई व्रत करने में वो भगवान के नाम उच्चारण से सब कुछ त्रुटियां खत्म हो जाती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और कहते हैं इसीलिए कलयुग का क्या युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि बाकी हम यज्ञ वगैरह ठीक से कर ही नहीं सकते, इससे जो कुछ भी है वो सब त्रुटि खत्म हो जाती है किसके द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि जीवन गोस्वामी कहते हैं ऐसा कि इसीलिए हम भक्ति के कोई भी अंग का जब भी पालन करते हैं साथ में हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अगर हम अर्चन विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं तभी हमें साथ साथ क्या करना चाहिए, भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमारा सिस्टम दिया है, जब आरती होती है भगवान की तो हम साथ साथ में क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी विशेष इस रूप में इस पॉइंट पे बल देते हैं कि जो भी क्रिया भक्ति के साथ में क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अंग भक्ति का यही है। तो आज जीव गोस्वामी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, आज बहुत पवित्र दिन है, जीव गोस्वामी का भी आज आविर्भाव तिथि है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो सर्ड गोस्वामी है इनका बहुत विशेष स्थान है हमारे संप्रदाय में या हमारे भक्ति के जीवन में, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु जिस कारण यहाँ पे आए थे जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो उसको विशेष रूप से 6 गोस्वामी जो है उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक मंदिरों की स्थापना की। तो ये 6 गोस्वामी में से जिनो गोस्वामी सबसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनका जो कार्य है वो बहुत महान है। ऐसा कि सठ गोस्वामी अष्टकम में हम गाते हैं, नाना शास्त्र विशारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। सब बोलिए वंदे रूप सनातन रघुयुगो। जीव गोस्वामी जैसे हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण गोस्वामी है, सर्व गोस्वामी में से किनके पुत्र है ये? अनुपम के, जो कि रूप और सनातन गोस्वामी के भाई थे। तो यानी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीव गोस्वामी कौन हो गए? नेफ्यू, भतीजे। तो सोचिए कितने महान है, ऐसे महान परिवार में जन्म हुआ जीव गोस्वामी का। और जब जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे तो उस समय बहुत प्रसिद्ध घटना हुई, क्या कि राम के लिए में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो रूप और सनातन को दर्शन दिया, विशेष विशेष कृपा की रूप सनातन में। वास्तव में महाप्रभु जो गए थे बंगाल, उनके जाने का मुख्य कारण यही था कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में अपनी कृपा कर दृष्टि करना चाहते थे। तो उस समय जी छोटे से बालक थे और दूर से उन्होंने दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रूप का, जो अत्यंत सुंदर रूप जो चैतन्य महाप्रभु का, उसका दर्शन छोटे से जीव गोस्वामी ने किया दूर से, जब वो रूप और सनातन पे विशेष कृपा कर रहे थे। लेकिन ये जो छवि है चैतन्य महाप्रभु की, तो सुंदर रूप हजार लंबित भुजो कनकावदात, तो अत्यंत सुंदर सुनहरा रूप चैतन्य महाप्रभु का, वो जीव गोस्वामी के मन में बस गया। हमेशा उसी रूप का वो चिंतन करते थे। और बचपन से ही जीव गोस्वामी उनको खेल कूद ज्यादा में मन नहीं लगता था। वो क्या करते थे, उनके छोटे छोटे विग्रह थे, किसके? कृष्ण बलराम, जैसे यहाँ पे आपके इतने सुंदर कृष्ण बलराम जी के विग्रह हैं। तो जीव गोस्वामी बचपन से ही कृष्ण बलराम जी के विग्रह की पूजा करते थे और हर समय कृष्ण बलराम जी की सेवा में वो दिन भर व्यस्त रहते थे। उनके लिए भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, हर समय कृष्ण बलराम उनके साथ सो जाना, तो बचपन से वो कृष्ण बलराम जी के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। और कुछ समय के बाद उनके जो पिताजी हैं अनुपम, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, भगवत धाम चले गए। तो जीव गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा विरह हुआ अपने पिता से। और फिर रूप और सनातन कहाँ चले गए? वृंदावन। तो जीव गोस्वामी को मन में बहुत अभिलाषा हुई कि मुझे भी जाना है वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु को शरण लेना है। उनको घर में मन नहीं लगता था, रोते रहते थे मन में। तो एक बार क्या, वो रात में उन्होंने बहुत दिव्य एक सपना देखा, इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके साथ नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर और सारे जो उनके पार्षद सब मिलकर प्रकट हुए, उनपे कृपा की। और फिर उन्होंने देखा कि जो उन्होंने कृष्ण बलराम जी का भी साक्षात दर्शन किया, और फिर देखा वही कृष्ण बलराम किसके रूप में बदल गए? गौर निताई के रूप में बदल गए। इस प्रकार बहुत सुंदर उन्होंने दर्शन देखा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रूप आप नित्यानंद प्रभु के शरण में जाइए। और उसके बाद फिर जीव गोस्वामी का घर में मन नहीं लगा और किसी प्रकार उन्होंने घर से भाग के कहां चले गए? नवद्वीप धाम, नवद्वीप गए। और नवद्वीप धाम जब पहुंचे तो वहां पे नित्यानंद जी उनके सामने आ गए। नित्यानंद जी उस समय पृथ्वी में थे, उन्होंने लीला समाप्त नहीं किया था, महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त कर चुके थे तब तक, लेकिन नित्यानंद जी उस धराधल में थे। तो नित्यानंद जी उनके सामने आ गए और स्वयं नित्यानंद प्रभु ने उनको क्या कराया? ब्रजमंडल पर नवदीप मंडल परिक्रमा। सोचिए कितना सौभाग्य है कि नित्यानंद जी स्वयं उनको दिखा रहे अलग अलग स्थान, ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, यहाँ पे महाप्रभु ने ये लीला की, यहाँ पे मैंने और महाप्रभु ने ये लीला की। तो स्वयं नित्यानंद जी उनको नवदीप मंडल परिक्रमा स्वयं करवाए और सारे स्थान उनको एक एक करके दिखाए। सची माता से भी मिले जीव गोस्वामी, और सची माता विष्णुप्रिया देवी सब ने उनकी बहुत कृपा, उनको आशीर्वाद दिया, उनके हमें प्रसाद दिया। तो इस प्रकार जितने महाप्रभु के वहां पार्षद थे सबने बहुत हृदय से आशीर्वाद दिया, किसको? जीव गोस्वामी को। और फिर नित्यानंद जी भी उनको बहुत आशीर्वाद दिए और फिर नित्यानंद जी ने उनको आदेश दिया कि अब तुम जाओ बनारस और वहां पे संस्कृत अध्ययन करके फिर कहां जाना? वृंदावन, क्योंकि तुम्हारे परिवार को महाप्रभु ने कहां पे स्थान दिया है? वृंदावन में। जैसे रूप सनातन वृंदावन में है, अब तुम भी वृंदावन जाओ, लेकिन रास्ते में कहां होके? बनारस, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि ये भगवान की योजना है, भगवान चाहते थे जीव गोस्वामी आगे चल के बहुत बड़े विद्वान बने। और उस समय जैसा कि होता है ना फेमस, जैसे आज के जमाने में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है या कुछ होते हैं फेमस जगह, तो बनारस उस समय, आज भी बनारस प्रसिद्ध है संस्कृत अध्ययन के लिए, लेकिन उस समय बनारस बहुत प्रसिद्ध था संस्कृत अध्ययन के लिए, संस्कृत की विद्या के लिए। तो वहां पे उन्होंने विद्या वचस्पति उनसे उनसे उन्हें शिक्षा संस्कृत का, वो शायद सार्वभौम भट्टाचार्य के कुछ रिश्तेदार थे, तो उनसे उन्होंने संस्कृत की विद्या प्राप्त की और निपुण हो गए। कुछ ही बहुत थोड़े समय में जीव गोस्वामी परम विद्वान बन गए संस्कृत में। जो सारी जो संस्कृत के व्याकरण है और न्याय वगैरह है उसमें उन्होंने उसके पारंगत हो गए उसमें, और इतने बड़े विद्वान हो गए कि वो उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई कि छोटे से छोटे उम्र में इतने महान विद्वान। कौन? जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी की ख्याति सब जगह फैल गई। लेकिन जीव गोस्वामी का असली उद्देश्य क्या था? चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, रूप सनातन के आश्रम में जाना। इसलिए उन्होंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। जैसे भी उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तुरंत बनारस छोड़ के वो वृंदावन धाम आ गए, और वृंदावन धाम जब आए तो सबने उनके बहुत विशेष स्वागत किया। सारे वैष्णव जो वृंदावन में थे, रूप सनातन, लोकनाथ गोस्वामी और जितने भी वहां पे महान सब वैष्णव आचार्य थे, सबने बहुत विशेष रूप से स्वागत किया जीव गोस्वामी का। क्योंकि सब जानते थे जीव गोस्वामी साधारण भक्त नहीं थे, विशेष महाप्रभु के कृपा पात्र है। और आगे चल के महाप्रभु के आंदोलन में उन्हें बहुत बड़ा भूमिका निभाना है। तो सबने बहुत हृदय से स्वागत किया जीव गोस्वामी का। और फिर जीव गोस्वामी आए और जीव गोस्वामी ने किसे शरण स्वीकार की? रूप गोस्वामी। तो हालांकि वो उनके शिष्यदार थे, लेकिन उन्होंने गुरु के रूप में रूप गोस्वामी के चरण में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया। और इतने बड़े विद्वान थे, सोचिए जो कम उम्र में उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु रूप गोस्वामी के बहुत ही तुच्छ सेवक के रूप में सेवा करते थे। रूप गोस्वामी जब ग्रंथ लिखते थे उस समय तो कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो उस समय तो वो जो पत्ते वगैरह होते उस पर लिखते थे। तो सब बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, जो शाही तैयार करना, तो पत्र तैयार करना, तो ये सब कौन करते थे? पत्ते तैयार करना जीव गोस्वामी। और भी बहुत उनके सब सेवा करते थे, नहाने के लिए जल लेके आते थे और बर्तन वगैरह सफाई करते थे। तो बहुत जो तुच्छ सेवा उसमें जीव गोस्वामी करते थे। वास्तव में तुच्छ सेवा नहीं, भगवान की सेवा तो हर एक महान सेवा होती है, लेकिन ये विशेष हमें शिक्षा देने के लिए कि हालांकि इतने बड़े आचार्य थे, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन वो जो नम्र सेवा की, क्योंकि भगवान उससे ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए जीव गोस्वामी के सेवा भाव को देख के, और फिर धीरे धीरे उनको वो और सेवा दी। विशेष करके जितने ग्रंथ रूप और सनातन लिखते थे उसका एडिटिंग कौन करते थे? जीव गोस्वामी। क्योंकि सोचिए कितनी कितना बड़ा सेवा है रूप सनातन के ग्रंथों का। क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसका? एडिटिंग संशोधन, एडिटिंग करते थे उसका। तो समय बस कम है, मैं एक दो लीला और बताऊंगा जीव गोस्वामी के बारे में, जो बहुत प्रसिद्ध लीला आप जानते भी हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी ने का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक बार क्या हुआ कि रूप नारायण के नाम पे एक महान विद्वान वहां पे आए, और ये क्या करते थे कि भारत में हर जगह जाते, साथ करते वर्ल्ड चैंपियन, नेशनल चैंपियन, तो क्या करते थे कि सारे विद्वानों से डिबेट करते थे, और उनको हराने के बाद क्या करते थे, एक उनके पास एक सर्टिफिकेट था, लिखते थे कि मैं आज के दिन इनसे तर्क में हारा हूं, हार स्वीकार करता हूं, और साइन करते थे। तो उस प्रकार रूप सनातन के पास आए और उनको बोले कि मैं ऐसे ऐसे महान हूं और मेरे साथ तर्क करो, या तो तर्क करो या फिर सरेंडर कर जाओ, साइन कर दो। तो रूप सनातन जानते थे क्या फायदा इससे मूर्ख के साथ तर्क करने के लिए। जो व्यक्ति कहता है मैं महान हूं वो तो अपने आप में मूर्ख है, क्या फायदा ऐसे मूर्ख के साथ तर्क करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाओ लो जल्दी लाओ, साइन कर देते हैं। तो तुरंत रूप सनातन ने साइन किया और बोला चले जाओ यहां से। तो फिर उन्हें वो जानते थे कि एक और जीव गोस्वामी भी थे, तो फिर जीव गोस्वामी से मिले, अरे तुम्हारे तो पहले से जो तुम्हारे गुरु वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, फटाफट तुम भी साइन करो। तो जीव गोस्वामी बोले क्या रूप सनातन को तुमने हराया? तो जीव गोस्वामी बोले मैं तुमसे तर्क करूंगा। और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी कई दिनों तक, आई थिंक 7 या 8 दिन तक यमुना के तट पे उनके साथ गंभीर रूप से तर्क वितर्क किए और पूर्ण रूप से परास्त कर दिए। किसको? रूप नारायण को। और फिर जीव गोस्वामी आके रूप गोस्वामी के चरण में आते हैं और उनको बताते हैं गुरुदेव मैंने आपके मान को रक्षा करने के लिए मैंने इसको परास्त किया, इस रूप नारायण को। तो रूप गोस्वामी लेकिन ये सब क्या होते, प्रसन्न होते हैं,
ऐसे मन में प्रसन्न थे लेकिन बाहरी रूप से वो एक विशेष शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। तो बहुत क्रोधित हो गए, बोले क्या क्या वृंदावन आए अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम महान आचार्य महान विद्वान हो, तुमने ऐसा क्यों किया, महाप्रभु की शिक्षा के तुम जानते नहीं, तुम वृंदावन में रहने योग्य नहीं हो, वृंदावन में कोई घमंडी आदमी का कोई स्थान नहीं है, चले जाओ यहां वृंदावन से। और जीव गोस्वामी तुरंत के गुरु के आदेश का पालन करके वृंदावन छोड़ के चले और मथुरा में रहने लगे। बहुत दुखी थे, रोते थे, बहुत कुछ खाते पीते नहीं थे ठीक से। तो कई समय बीतने के बाद सनातन गोस्वामी क्योंकि ब्रज में हर जगह घूमते रहते थे तो उन्होंने को पता चला कि ऐसे जीव गोस्वामी मथुरा में है, तो वो फिर रूप गोस्वामी को आके बोले कि निवेदन किए, बोले बोले महाप्रभु की एक शिक्षा का पालन नहीं करें कि महाप्रभु की शिक्षा को तीन लाइन में हम एक तरह से हम उसका सूत्र रूप में बोल सकते हैं। क्या है वो तीन शब्द, तिल नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा। तो बोले कि आप इसका एक चीज का पालन नहीं कर रहे, क्या पालन नहीं कर रहे, जीव दया। जीव दया मतलब जीव जीवों पर दया, यहां पर इसका क्या जीव गोस्वामी पे दया। तो रूप गोस्वामी समझ गए, बोले कि हाँ नहीं, तुरंत फिर उन्होंने वापस बुला लिया जीव गोस्वामी को और फिर अपने हाथों से उनका देखभाल किया और फिर जीव गोस्वामी ठीक हो गए। लेकिन फिर दोबारा एक ऐसी घटना हुई कि वल्लभाचार्य जी थे, तो रूप गोस्वामी जब ग्रंथ लिखा भक्ति रसा में सिंधु, तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी को दिया इसका एडिटिंग करने। तो वल्लभाचार्य जी इसमें कुछ बोले, हाँ ये कुछ छोटे मिस्टेक है। तो जीव गोस्वामी फिर वल्लभाचार्य जी से मिले और बोले कि नहीं, और उनको साथ जब तर्क किए तो उनको सिद्ध किए कि नहीं इसमें कोई मिस्टेक नहीं था। तो वल्लभाचार्य जी तुरंत वापस आए और रूप गोस्वामी को वापस दे दिए, बोले हे रूप तुम्हारे तो इतने विद्वान शिष्य है, मेरी क्या आवश्यकता है, वो तो सब कुछ जानते हैं, वास्तव में तुम जो लिखे हो इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर वल्लभाचार्य चले गए और फिर रूप गोस्वामी फिर से बहुत क्रोधित हो गए, जीव को बुलाए कि जीव तुम इतने घमंडी हो गए कि वल्लभाचार्य जी हमारे गुरु के समान है, वो एक अपने वात्सल्य भाव से उन्होंने मेरे ग्रंथ को संशोधित करना चाहते थे और तुम उनके साथ में जाके तर्क कर दिए, उनको हरा दिए, तुम्हारा कोई स्थान नहीं वृंदावन में, नगर चले जाओ यहां से। फिर दोबारा उन्होंने जीव गोस्वामी को वृंदावन से निकाल दिया और फिर वो नंदघाट नाम के एक स्थान में चले गए जीव गोस्वामी। और इस समय बहुत दुखी हो गए जीव गोस्वामी, वो मगरमच्छ जहां रहते ना मगरमच्छ का गुफा वहां पर जाके जीव गोस्वामी रहने लगे और केवल आटा को यमुना जल में मिला के थोड़ा बहुत एक दो दिन में कुछ खा लेते थे और दिन भर रोते रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे। बहुत उनके मन में कष्ट था कि मैंने गुरु के चरणों में अपराध किया। तो फिर कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने सनातन गोस्वामी को कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक साधु है, वो कुछ नहीं खाते और एक गुफा में है, तो आप उनका ध्यान दीजिए। तो सनातन उसे समझ गए, तो जीव गोस्वामी तुरंत वो जीव गोस्वामी को लेके रूप गोस्वामी के पास पहुंचे, बोले रूप ये क्या कर रहे हो। फिर से बोले कि आप महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे, आप जीव गोस्वामी को स्वीकार करो। तो फिर जीव गोस्वामी को इस समय फिर रूप गोस्वामी उनको बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल किया, अपने हाथों से उनको उनके स्वास्थ्य को फिर से उन्होंने ठीक किया और वास्तव में बहुत प्रेम करते थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने उनको अपने हाथों से बना के राधा दामोदर जी का विग्रह दिया। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर जो है तो वो जीव गोस्वामी का हेडक्वार्टर था, तो वो स्वयं वो जो विग्रह है रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बना के जीव गोस्वामी को प्रदान किया। तो ये जो घटना जो मैंने बताया आपको, जो दो बार रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को निकाल दिया, तो इसका बहुत इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि अंदर से तो प्रसन्न थे रूप गोस्वामी, तो दोनों एक दूसरे से सही है। जीव गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया, दोनों बार जो तर्क किया जीव गोस्वामी ने अपने आप को स्थापित करने के लिए तर्क किया या किस लिए किया, अपने गुरु के लिए। तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि अगर कोई गुरु की निंदा करे या कोई वैष्णव की निंदा करे तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें सुनना नहीं चाहिए वैष्णव की निंदा या कोई उनका अपमान करे। तो अपने गुरु के मान को स्थापना रक्षा करने के लिए जीव गोस्वामी ने तर्क किया रूप नारायण के साथ और वल्लभाचार्य जी के साथ, तो उनके दृष्टि से वो सही थे। लेकिन रूप गोस्वामी स्थापित करना चाहते थे विनम्रता का सिद्धांत, कि विशेष करके जो हमारे संप्रदाय है इसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है, विनम्रता का, ह्यूमिलिटी। तो बताना चाहते थे कि इस प्रकार वृंदावन में हमें जो भक्त रहते हैं उनको घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनको दोनों बार निकाल दिया। और लेकिन अंदर से रूप गोस्वामी प्रसन्न थे और जीव गोस्वामी का भाव भी देखिए, उन्होंने बिल्कुल भी इसका क्या कहते हैं प्रतिरोध या ऑब्जेक्शन नहीं किया। बोल सकते थे नहीं गुरुजी मैं तो आपके लिए ऐसा किया, आप मेरे को क्यों दंड दे रहे, नहीं, जीव गोस्वामी तुरंत दंड स्वीकार कर लिया। तो ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु अगर हम दंड दे, अगर हम दंड के अगर हमें लगता है कि हम गलती नहीं भी की, तुरंत हम इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर बाद में जीव गोस्वामी जब रूप और सनातन गोस्वामी भगवान चले गए तो फिर नेक्स्ट आचार्य कौन बने? जीव गोस्वामी। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 4 लाख श्लोक लिखे जीव गोस्वामी। सबसे प्रसिद्ध इनमें से क्या है? सर संदर्भ, जो कि बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत ही एडवांस किताब है, जिसके कि एक एक श्लोक पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। जो भारत, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कहा जाता है कि एक पूरा पूरा लाइब्रेरी है इसमें जीव गोस्वामी के ग्रंथ हैं, और ऑक्सफर्ड में भी एक एक लाइन पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। इतना इतना गहरा सिद्धांत छुपा है इनमें, जीव गोस्वामी के जो उनके लिखे हुए किताब है। तो सर संदर्भ ने लिखा है, गोपाल चंद लिखा है, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जीव गोस्वामी का। बहुत महान आचार्य थे, बहुत मंदिर, राजरामोदर मंदिर भी उन्होंने बनाया। साथ ही साथ जीव गोस्वामी ने प्रचार भी बहुत किया। जो अकबर जो उस समय राजा थे, अकबर को भी प्रचार जीव गोस्वामी ने किया। अकबर भी बहुत प्रभावित होकर थे जीव गोस्वामी से। तो इसीलिए ब्रज की जो इतना विकास उस समय बने, तो सोचिए कि मुगल के राज्य में कैसे हो पाता। तो क्योंकि जीव गोस्वामी ने प्रचार किया अकबर को, तो इसीलिए उनके सपोर्ट से सारे बड़े बड़े मंदिर ब्रज में बने। और अकबर ने यहां तक ये भी उन्होंने एक आदेश दिया कि कोई ब्रज में आके पशु हत्या नहीं कर सकता। तो अकबर सोचिए इतने महान भक्त बन गए। कौन प्रचार के विशेष करके? जीव गोस्वामी। तो कितना महान उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। और साथ ही साथ वो मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे थे। तो ऐसा नहीं कि वो बड़े विद्वान थे इसलिए उनको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो मैनेजमेंट भी बहुत निपुण थे। राधाकुंड, जब राधाकुंड के सारे जो लैंड पेपर्स इत्यादि वो जाके सब कुछ ठीक किए, तो ये भी एक जीव गोस्वामी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जो भक्त वो हर चीज में निपुण होते हैं। जो खास करके वैष्णव आचार्य, तो महान वैष्णव थे वो, और बड़े बहुत बड़े विद्वान थे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में भी बहुत निपुण थे। और उनके वाहन उन्होंने कई वैष्णव को शिक्षा दी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य इत्यादि को शिक्षा उन्होंने दिया। इसलिए बहुत विशेष स्थान है जीव गोस्वामी का हमारे संप्रदाय में। और जो गोलोक वृंदावन में जीव गोस्वामी का स्वरूप है वो क्या है? विलास मंदिर। जैसा आप जानते हैं सारे गोस्वामी भगवान के नित्य परिकर है, नित्य दास है, तो विलास मंदिर ही है। तो जीव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है हमारे संप्रदाय में। तो आइए आज उनके जीव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उसकी भक्ति प्रदान करें और हम भी चैतन्य भाव के आंदोलन में कुछ सेवा कर पाए, अपने गुरु के चरणों में प्रभुपाद जी को सेवा कर पाए। तो बहुत विशेष थी आज, और वामन देव जी का भी आविर्भाव और जीव गोस्वामी का आविर्भाव। तो वामन देव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और जीव गोस्वामी के चरणों में। श्री वामन देव आविर्भाव महामहोत्सव की, जीव गोस्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की, प्रभुपाद की जय। सामित गौर भक्तवृंद की।